हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ऋषभ से फ़ोन पर बात खत्म करने के बाद शिविका जल्दी से अपना सामान समेटकर वहाँ से निकल ही रही थी। उसे उस वक्त ऑफिस में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं था, लेकिन उसे पता था कि घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऋषभ शायद हर्षिता को घर से ही बाहर निकाल देगा। वो उन दोनों को बचपन से देखती आ रही थी। उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती और यही वजह थी कि शिविका हर्षिता को घर में रहने देना सहन कर रही थी। और उसके बाद ऋषभ ने उसकी शिकायत करते हुए उसे फ़ोन कर दिया था। अभी शाम के 6 बजे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी शिविका वहां से निकल ही रही थी कि तभी अंकिता उसके केबिन में आई और उसे जाने के लिए तैयार होते देख अंकिता ने एकदम से कहा, मैडम आप कहीं जा रही हैं क्या? अच्छा हाँ, वो क्लाइंट मिस्टर मेहरा से मिलने जा रही होंगी, उन्हें कुछ डिज़ाइन बदलने को लेकर आपसे बात करनी है। अंकिता की बात सुनकर शिविका एकदम रुक गई। वो अपना सामान उठाकर अपने बैग में रख रही थी और तभी उसने इस बारे में सोचते हुए कहा, मिस्टर मेहरा से मीटिंग? व्हाट रियली आर यू टॉकिंग अबाउट अंकिता? और इस बारे में तो तुम भी उनसे बात कर सकती हो। शिविका की बात सुनकर अंकिता एकदम सीरियस होते हुए बोली, मैम आपको इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया क्या? करण ने, मैंने उसे पहले ही बता दिया था। अंकिता ने जैसे ही करण का नाम लिया तो शिविका को इस बारे में याद आ गया, करण ने उसे इस बारे में बताया था। शिविका याद करते हुए बोली, हाँ हाँ, करण ने मुझे शायद सुबह बताया था, इसकी गलती नहीं है, मैं ही भूल गई, लेकिन तुम ही देख लो फिलहाल ये। अंकिता ने शिविका को पूरी बात बताई, लेकिन मैंने उनसे इस बारे में बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे मिलकर ही बात करनी है। वो अपने ज्वेलरी डिज़ाइन फाइनल करने से पहले आपसे कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं और उनका कहना है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, उन्हें और किसी से बात नहीं करनी। शिविका फ्रस्ट्रेट होकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ओ गॉड, ये किस तरह की ज़िद है, अंकिता ने कहा। हाँ, मुझे भी उनका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी और प्रॉफिटेबल डील होने वाली है, इसलिए हम उन्हें सीधे मना नहीं कर सकते, और मुझे लगा था शायद आप वहाँ जाने के लिए ही निकल रही हैं। शिविका उसकी बात का जवाब देने वाली थी, लेकिन फिर उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं मैं वहाँ नहीं, घर। एक्चुअली अंकिता, जाओ तुम और करण को भेजो, मुझे उससे बात करनी है, फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। अंकिता ने कहा, ओके मैम, मैं भेजती हूँ उसे। इतना बोलकर वो केबिन से बाहर चली गई और 2 मिनट बाद करण केबिन के अंदर आया। करण को अंदर आते देख शिविका ने पूछा, करण ये मिस्टर मेहरा से मीटिंग, इसके शेड्यूल के बारे में तुमने मुझे दोबारा रिमाइंड क्यों नहीं करवाया? उसकी बात पर करण एकदम धीमी आवाज में बोला, अच्छा ही है, भूल जाओ इस बारे में, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसके साथ तुम्हारी मीटिंग। शिविका को ठीक से सुनाई नहीं दिया कि करण क्या बोल रहा है, इसलिए उसने पूछा, क्या बोल रहे हो करण? खैर जो भी, जल्दी से मेरा शेड्यूल चेक करो और बताओ कहाँ जाना है अभी मीटिंग के लिए। करण उसकी ये बात सुनकर खुश हो गया कि शिविका वहाँ अकेले नहीं जा रही है और वो करण को भी अपने साथ ले जा रही है, इसलिए करण ने जल्दी से चेक करके उसे मीटिंग की लोकेशन बताई और अगले 5 मिनट में ही वो दोनों एक साथ ऑफिस से निकल गए। दिव्या ने उन्हें एक साथ जाते हुए देखा। भले ही करण शिविका का प्रथम असिस्टेंट था, लेकिन जिस तरह से वो दोनों एक साथ कम्फर्टेबल थे और जो कुछ भी दिव्या ने अब तक नोटिस किया था, उसके हिसाब से उसका शक करण और शिविका पर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसकी शिविका से सामने से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपने सामने से उन दोनों को निकलते हुए देख रही थी और जब तक वो दोनों उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए, दिव्या शिविका और करण की तरफ ही देखती रही। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, बॉस कुछ ज्यादा ही पैम्पर करती है ना करण को। उस लड़की की आवाज़ का जवाब देते हुए दिव्या ने एकदम से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। और लेकिन वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर निधि खड़ी थी। दिव्या उसके साथ ये बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी निधि पहले दिन से ही करण को पसंद करती है और एक तरह से उसे करण पर क्रश है। उसने कई बार करण पर ट्राई किया और वो अक्सर उसके साथ फ्लर्ट भी करती रहती है, लेकिन करण उसे भाव नहीं देता और बिल्कुल बाकी सारे कलीग की तरह ही ट्रीट करता है। दूसरी तरफ हर्षिता की वजह से ऋषभ गुस्से में आकर अपने घर से बाहर निकल गया था। उसके पापा ने उसे रोकने और हर्षिता से बात करवाकर मामला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपने पापा की बात नहीं मानी थी। उसके वहाँ से निकलकर जाने के बाद हर्षिता मिस्टर खन्ना के सामने बैठी हुई बोली, अंकल, ये ऋषभ भैया हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? वो तो गलती से मेरा मिल्कशेक उसके कपड़ों पर गिर गया था और मैंने सच में उन्हें नहीं देखा था। इसके लिए मैंने उससे सॉरी भी बोला था 2 बार, लेकिन फिर भी। मिस्टर खन्ना ने हर्षिता को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो है ही नालायक। जाओ, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए दोबारा मिल्कशेक बनवाने को बोल देता हूँ। हर्षिता उनकी बात मानते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ ऋषभ गुस्से में बिना बाइक या कार लिए ऐसे ही पैडल वहाँ से बाहर निकल गया था और सड़क के किनारे पर अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए बड़ी ही तेज कदमों से चल रहा था। उसके ईयरफोन में म्यूजिक प्ले हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उस वक्त म्यूजिक सुनने में बिल्कुल नहीं था। वो अपना अलग ही कुछ सोच रहा था। ऋषभ उसी तरह खोया हुआ सा सड़क पर चलते हुए अपने मन में बोला, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई भी मुझे इस बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता है। और फिर मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किसके साथ रहता हूँ और इतनी डिटेल में सब कुछ पापा और दीदी को बताऊँ क्यों? इतना ही नहीं, इसके बाद ऋषभ के मन में शिविका की इंगेजमेंट वाली बात भी आ गई और वो उसी तरह आगे बढ़ते हुए इस बारे में सोचने लगा। हाँ, दीदी की इंगेजमेंट के बारे में भी मुझे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा, यहाँ तक कि खुद शिविका दीदी ने भी। मुझे तो लगता है अपनी शादी में भी मुझे इन्वाइट करने का प्लान नहीं होगा उनका। वो तो डैड ने उस दिन गुस्से में बता दिया था, नहीं तो मुझे तो अब तक पता नहीं चलता। खैर, कोई बात नहीं, मम्मी के बाद तो इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझता हो। पहले मुझे लगता था कि कम से कम दीदी को मैं अपना मान सकता हूँ, लेकिन अब तो वो भी। अपने मन में ये सब बोलता हुआ ऋषभ उसी तरह आगे बढ़ रहा था और उसका ध्यान भी बिल्कुल सामने की तरफ नहीं था। तभी उसे एक धक्का लगा और वो साइड में जमीन पर लगभग गिरने ही वाला था। तभी उसने जमीन पर अपना हाथ देखकर खुद को गिरने से बचा लिया और उसे समझ आया कि किसी ने जानबूझकर उसे ये धक्का दिया था। तो उठकर खड़े होते हुए उसने अपने साइड में देखा और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने खड़ी वो लड़की उस पर चिल्लाती हुई बोली, ओ मिस्टर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कानों में ईयरफोन लगा रखे हैं, लेकिन नजरें तो आ रही हैं ना, या फिर मरने का शौक है? धक्का लगने की वजह से उसके एक कान का ईयरफोन निकलकर जमीन पर गिर गया था, इसीलिए उसे उस लड़की की पूरी बातें साफ साफ सुनाई दी थीं।
और ऋषभ उसकी तरफ जैसे ही मुड़ा, वो लड़की एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो लड़की ऋषभ को पहचान गई थी। ऋषभ को भी वो लड़की थोड़ी देखी हुई और जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन ऋषभ ने उस लड़की को कहाँ देखा था ये बात उसे याद नहीं आ रही थी। लेकिन फिलहाल उस लड़की का इस तरह से चिल्लाना ऋषभ से बर्दाश्त नहीं हुआ। भले ही उस लड़की ने उसे कार के सामने से धक्का देकर साइड में किया था और उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद जो वो उस पर इतना ज्यादा चिल्लाई, उसकी वजह से वहाँ आसपास के लोग रुककर उन दोनों को ही देखने लगे। तभी ऋषभ ने गुस्से से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारी नजरें क्या मुझ पर ही थीं? और मुझे मरने का शौक हो या जीने का, तुम्हें उससे क्या? तुम होती कौन हो इस तरह से मुझ पर सबके सामने चिल्लाने वाली? उस लड़की को ऋषभ के ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वो लड़की और कोई नहीं, करण की बेस्ट फ्रेंड मीरा थी, जो कि उस फोन शोरूम में काम करती थी जहां से कुछ दिनों पहले ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन और अपने और समर के लिए ईयरफोन खरीदे थे। ऋषभ उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन वो ऋषभ को अच्छी तरह से पहचान गई थी। उसे ऋषभ उस दिन से आज बहुत ही डिफरेंट नजर आया। उस दिन समर के साथ तो वो बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था और उसने उस दिन मीरा से भी काफी अच्छी तरह से बात की थी, जबकि आज तो मीरा ने उसकी हेल्प की, एक तरह से उसकी जान बचाई, लेकिन फिर भी उसे थैंक यू या कुछ भी अच्छे शब्द बोलने की बजाय वो उस पर उल्टा चिल्ला रहा है। उस लड़की को ऋषभ के ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वो लड़की और कोई नहीं, करण की बेस्ट फ्रेंड मीरा थी, जो कि उस फोन शोरूम में काम करती थी जहां से कुछ दिनों पहले ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन और अपने और समर के लिए ईयरफोन खरीदे थे। ऋषभ उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन वो ऋषभ को अच्छी तरह से पहचान गई थी। उसे ऋषभ उस दिन से आज बहुत ही डिफरेंट नजर आया। उस दिन समर के साथ तो वो बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था और उसने उस दिन मीरा से भी काफी अच्छी तरह से बात की थी, जबकि आज तो मीरा ने उसकी हेल्प की, एक तरह से उसकी जान बचाई, लेकिन फिर भी उसे थैंक यू या कुछ भी अच्छे शब्द बोलने की बजाय वो उस पर उल्टा चिल्ला रहा है। मीरा ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसकी साइड से निकलकर आगे चली गई, क्योंकि उसे उसकी जान बचाने के लिए एहसान नहीं जताना था और साथ ही उसे ऋषभ से कोई भी बहस नहीं करनी थी। क्योंकि बाकी सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे, ये बात उसने भी नोटिस कर ली थी। उसके इस तरह चुपचाप बिना कुछ बोले साइड से निकलकर चले जाने पर ऋषभ ने एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर अपना हाथ और कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए बोला, सारे कपड़े खराब हो गए और पता नहीं क्यों इतना दिमाग खराब है मेरा। बेवजह ही उस लड़की पर चिल्ला दिया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी इन सब में, वो तो बस मेरी हेल्प कर रही थी जो शायद कोई भी किसी की करता है, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है मैंने उसे कहाँ देखा है। अपने मन में ये सब बोलते हुए ऋषभ उस लड़की के बारे में ही याद करने लगा और तभी एकदम से उसे याद आया कि वो उसे मोबाइल शोरूम में मिला था। और ये बात याद आते ही ऋषभ उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद भी ऋषभ को वो लड़की कहीं भी नज़र नहीं आई। ऋषभ थोड़ा आगे बढ़कर इधर उधर देखने के बाद बोला, लगता है चली गई, कोई बात नहीं, बाद में मिलूंगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा उसे और थैंक यू भी शायद। लेकिन इसके साथ ही उसे एकदम से समर की भी याद आ गई और वो उसके बारे में ही सोचने लगा। समर के बारे में सोचकर पता नहीं क्यों ऋषभ को बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ी देर के लिए वो अपनी जैसे सारी टेंशन भूल गया। क्रमशः